الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مرسلين، على رسوله الكريم، والعاقبة للمتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیکھو، یہ پانچویں مجلس ہے، چار مجلس گزر گئے. اس میں عنوان ہے بد نظری اور اس کا علاج. یہ بد نظری یہ عام بیماری ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، بلکہ بد نظری کا لفظ آتا ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف مرد ہی کرتے، عورتیں تو کرتی نہیں ہیں. ان کا بھی، مردوں کا دیکھنا یہ بھی بد نظری میں داخل ہے. وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلے. مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم. اب سنو، ایک صاحب نے اپنا حال لکھا حضرت تھانوی کو. شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے، یعنی غلبہ رہتا ہے، یوں سمجھو. نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں. باک نہیں یعنی ذرا بھی خوف نہیں. کوئی خوف نہیں، دیکھ لیتا ہوں. جی، تو یہ کسی نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ. اب سنو، ایک صاحب نے اپنا حال حضرت والا کو لکھ کر بھیجا. اور اصول یہ ہے کہ جب کسی شیخ سے تعلق ہو تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے. جب کسی شیخ سے تعلق ہو، یاد رکھو، تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے، یاد رکھے. یہ لوگ عام طور پر اس میں کیا لکھے، کیسے بتاوے، اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی میسج کے ذریعے سے کسی طریقے سے، لیکن بتانا ہے. مرد بھی بتائیں، اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے. اگر وہ اس کو چھپائے اور شرمائے تو علاج کیسے ہو؟ جیسے ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیماری نہیں چھپائی جاتی، ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیماری نہیں چھپائی جاتی. اگر بیماری کو چھپائے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ اسی طرح جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو چاہے کتنی ہی شرمناک بات ہو وہ شیخ پر ظاہر کرے، چاہے کتنی ہی شرمناک بات ہو وہ شیخ پر ظاہر کرے تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اور یہ خیال نہ کرے کہ شیخ کو یہ بات لکھوں گا تو اس کی نظر سے میری قدر کم ہو جائے گی، یا اس کے دل میں میرے بارے میں برائی پیدا ہوگی، اور شیخ کے دل میں برائی پیدا ہونا مرید کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہ سارے اندر وساوس آئیں گے. یاد رکھیے، مائک کو میوٹ کر لیں، آواز آ رہی ہے اللہ کے واسطے. جب یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے اصلاح کا کام لیتے ہیں نا، کسی سے اصلاح کا کام لیتے ہیں تو اس کو اپنی مخلوق پر رحمت اور شفقت عطا فرماتے ہیں. ہمیشہ جیسے نبی امت کے لیے شفیق ہوتا ہے، ایسے ہی جو نبی کا کام لے کر چلے گا وہ امت کے لیے شفیق ہوگا. یاد رکھیے، تو امت کے لیے شفیق ہوگا، اس لیے شیخ جو ہوگا وہ رحمت اور شفقت عطا اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے. اگر کوئی شخص بری سے بری بات بھی شیخ کو لکھتا ہے تو شیخ کے دل میں اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شیخ کے دل میں رحم، ترس اور شفقت پیدا ہو جاتی. جیسے ماں باپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی بچہ बीमार या माजूर हो तो माँ बाप को तंदुरुस्त बच्चे पर इतनी शफकत और मोहब्बत नहीं होती जितनी माजूर और अपाहज बच्चे पर होती। सारी दुनिया इस बच्चे से गिन कर रही होती है, दूर हो रही होती, लेकिन माँ बाप उस पर फिदा है और उसकी खिदमत में लगे हुए हैं, उसका पेशा पाखाना साफ कर रहे हैं। इसी तरह शेख को बुरी बात लिखने से ये मत सोचो कि शेख बदजन होगा और शेख का बदजन होना मेरे हक में नुकसानदेह होगा, बल्कि ऐसे मुरीद से और ज्यादा मोहब्बत और शफकत पैदा होती है, उसकी तरफ और ज्यादा तवज्जो होती है। एक मिसाल और है कि जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज की बीमारी जब बड़ी होती है तो डॉक्टर ज्यादा शफकत करता है, डांटता नहीं है, तुम्हें बीमारी लेकर क्यों आए, तुमने गलती क्यों कर दी, ऐसा कभी डांटता नहीं है, बल्कि उसकी शफकत बढ़ जाती है और ये अपनी मेहनत को बढ़ा देता है कि इसका ये मरज कैसे दूर हो जाए। जी, तो ऐसा ही शेख ये रूहानी डॉक्टर होता है, उसके सामने अगर कोई बीमारी, हाँ वो हमारा नफ्स रोकता है, वो मुफ्ती बनता है। क्या मुफ्ती बनता है, एक सवाल है जो सबके दिलों में होगा, अभी इसका जवाब आ रहा है, वो सुनो। बाज़ औकात अहले इल्म को एक इश्काल होता है, वो ये है कि हदीस शरीफ में है कि कोई शख्स अपना ऐब और अपना गुना दूसरे पर जाहिर न करे, ये हदीस में आया है, और यहां तो आप बोल रहे हैं कि जाहिर करो। अब ये क्या, ये सवाल होगा आपके, तो उसका भी जवाब सुन लो कि अपना गुना दूसरे पर जाहिर न करे कि मैंने फुला वक्त फुला गुना किया था, या मैं फुला गुना में मुबतला हूं, या फुला बातिनी बीमारी में मुबतला हूं, उसका इजहार दूसरों से नहीं करना चाहिए, यह हदीस में आया है। हाँ, अल्लाह ताला से करना चाहिए कि अल्लाह मैं इस गुना में मुबतला हूं, मुझे इस गुना से निकाल दीजिए। तो बेचारे बहुत सारे लोग इस हदीस को याद रखते हैं और खुद ही बखुद तोबा भी करते हैं, खुद ब खुद अल्लाह से मांगते भी है और सोचते हैं कि हमारा इलाज हो जाएगा, और इलाज नहीं हो रहा है, गुनाह नहीं मिट रहा है और परेशान हाल है अंदर से। ये होंगे, ये सुनने वाले अपने दिलों को जरा देख ले कि क्या हम परेशान है कि नहीं है, और यही चीज की वजह से कह नहीं रहे कि भाई क्यों हम कहे। सुनो हजरत हकीम, इसका जवाब सुनो, हजरत हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस की तशरीह में फरमाया के हुक्म गैर मुरब्बी के लिए है, ये हुक्म गैर मुरब्बी के लिए है, यानी अपने गुनाह और अपने बातिनी बीमारियों का इजहार हर कसो नाकस पर न करे, हर एक को नहीं दिखाना है। वो ममानियत जो आई है ना, बहुत से लोग अपने गुनाह लोगों को दिखाते फिरते हैं, अरे मैं तो ये करके आया, मैं तो ये कर, गुना करते हैं और बताते, तो वहां पर ममानियत है कि तुम मत बताओ और अल्लाह से खुद ब खुद तोबा कर लो। जिनको बहुत, किसी ने चोरी की, अरे बोले मैंने तो उसका माल को तो ये चोरी करके आया, मैंने उसको इस तरीके से फंसाया और मैंने तो उसको ये धोखा दे दिया, अब ये भी तो क्या गुनाहों का इजहार नहीं है, ये तो गलती हो गई। तो यहां पर मना है कि मत करो, लेकिन अगर तुम्हें इस गलती को और इस गुनाह को निकालना है अपनी जिंदगी से, तो फरमाया उसके लिए रूहानी डॉक्टर, उसी का नाम मुरब्बी है, शेख है, तो फरमाया उसको ये हुक्म गैर मुरब्बी को, जो शेख नहीं है उसको नहीं बताना, यानी अपने गुनाह और अपने बातिनी बीमारियों का इजहार हर कसो नाकस पर न करे, हर एक से न करे। अलबत्ता वो शख्स जिस मुरब्बी की तरबियत में है, जिस शेख की तरबियत में है, उस पर जरूर उसका इजहार करे। वो इजहार इस हदीस की नहीं में दाखिल नहीं है, जो हदीस में मना है वो ये मना नहीं है, वो मना और लोगों को इलाज की नीयत के बगैर बाजे फखरिया बताते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा, अपनी बढ़ाई बताते हैं, तो ये सब मना है। जैसे किसी इंसान के सामने कशफे औरत जायज नहीं, कशफे औरत यानी सतर, औरत का माना है सतर, इसलिए औरत को औरत कहते हैं कि वो सतर है, सतर कहते हैं छुपाने की चीज, इसलिए किसी के सामने सतर का खोलना जायज नहीं, लेकिन तबीब के सामने, डॉक्टर के सामने जरूरतन सतर का खोलना जायज है, वहां जरूरत है, अगर आप किसी तबीब के पास इलाज के लिए गए और बीमारी जिस्म के उस हिस्से में है जिसको छुपाना वाजिब है, या बीमारी तो किसी और हिस्से में है लेकिन तबीब के लिए इलाज की जरूरत के लिए उस हिस्से का देखना जरूरी है, तो इस तबीब के सामने सतर्क खोलना जायज है, इसलिए कि इलाज उस पर मौकूफ है, बगैर जरूरत के खोलना नहीं। इसी तरह अपने गुनाहों का इजहार किसी दूसरे पर करना जायज नहीं कि मैंने फुला गुनाह किया था, बल्कि उस गुनाह को छुपाओ, इसलिए कि वो गुनाह गंदगी है, उस पर पर्दा डाल दो और अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करो। खामखा उसका इजहार और इफ्शा फैलाओ न करो, लेकिन मुरब्बी और शेख के सामने उसका इजहार जरूरी है। जी, मुरब्बी और शेख के सामने उसका इजहार जरूरी है ताकि इस बीमारी का इलाज और उसका इजाला हो सके। लिहाजा जिस किसी से तरबियत का ताल्लुक हो, चाहे वो जाबते का शेख हो या जाबते का शेख तो न हो बल्कि उस्ताद हो, जाबता यानी बाकायदा शेख हो और उससे हमारा ताल्लुक हो और उससे हमने बैत की हो या जो भी हो, और बाज मरता उस्ताद होता है लेकिन उस्ताद से हम मशवरा करके चलते रहते, तो वो भी एक होता है, उसको अपना मुरब्बी बना रखा है, या बाप हो और वो बाप बेटी की तरबियत कर रहा हो, तो उसके सामने अपनी इस बीमारी का इजहार इस हदीस की मुमानियत में दाखिल नहीं। इस उसूल के तहत एक साहब ने हजरत वाला को लिखा कि शहवानी ख्यालात का हर वक्त दिल पर गलबा रहता है, नामहरमों को बुरी नजर से देखने में जरा भी बाक नहीं, डर नहीं। मतलब ये था कि बद नजरी में मुब्तला हूं, क्या इलाज करूं, ये लिखा। देखो, चूंकि इस गुनाह में बकसरत लोग मुब्तला है, इसलिए हजरत वाला का ये जवाब बड़ा जामे और सबके लिए मुफीद है। बद नजरी तो यहां पर मर्दों के लिए भी है, बाज मरता बाज औरतें है तो बुरके में है तो पर्दे में, लेकिन सबको देख रहे हैं तो वो समझते हैं हमको तो मर्दों को देखना हराम है ही नहीं। मर्द हमको न देखे इसके लिए हम पर्दे में हैं, वो पर्दे में इसलिए जा रहे कि मर्द हमको न देखे, बाकी हम तो सबको देख सकते, ऐसा नहीं है। याद रखे, बाज मरतबा मोबाइल के अंदर देखते हैं, तो वो कि हमें नहीं, औरतों को भी इस तरीके से वो अपने आप को भी छुपाना है ताकि गैर महरम की नजर न पड़े, और हमें अपनी नजरों को नीचा करना है ताकि हमारी नजर किसी गैर महरम मर्द पर न पड़े, इसे दोनों तरफ से ध्यान रखें। तो उसके लिए नजर बचाने के लिए हिम्मत की जरूरत है। चुनांचे जवाब में इरशाद फरमाया, ये शर ऐसा है कि अपने असर से तमाम ताआत के अनवार को तारीक कर देता है। देखो, बदनजरी जो है, नजर देखना ना महरमों को, ये ऐसा शर है, ऐसी बुराई है, ये ऐसी बीमारी है कि जितनी भी हम इबादत करते हैं उसके नूर को जुल्मत से बदल देती, ताअत के अनवार को तारीक कर देता है, इसलिए इसका इलाज एहतमाम से करना चाहिए, एहतमाम से करना चाहिए। और जाहिर है कि ये मादा खलकी है, यानी ये जो अंदर रखी है सिफत वो खलकी है यानी पैदाइशी है, ये अल्लाह ने रखा ही है, एक चीज रखी है, बस वो शर नहीं, ये शर नहीं बल्कि इसमें बहुत से मसाले हैं। अलबत्ता इस मादे के इक्तिजा पर अमल करना शर है, मादा हकीकत में शर नहीं, इसको गलत जगह इस्तेमाल करना शर है, सही जगह इस्तेमाल करना ईमान है। और वो इख्तियारी है, और इख्तियारी की जिद भी इख्तियारी है, बस फैल से रुकना इख्तियारी ठहरा, यानी ये इख्तियार है, इंसान उससे रुक सकता है और उसको बचा भी सकता है, इसमें कोई माजूरी नहीं कि नहीं मेरी तो नजर बस रुक ही नहीं सकती, नहीं, जैसे नजर झुकाना इख्तियार में है, उठाना भी इख्तियार में है, तो माजूरी नहीं, बस हिम्मत कीजिए, यही उसका जवाब है। चंदे तकल्लुफ होगा यानी चंद दिन तकलीफ होगी, फिर आदत हो जाएगी, फिर लज्जत और फरहत होगी, ये उस किताब की इबारत थी जो अनफासे ईसा थी। अब उसकी तफसीर सुनो। जब आदमी किसी बीमारी में मुबतला हो तो पहले इस बीमारी की कैफियत और उसकी शिद्दत और उसके असरात का इदराक और एहसास करें। जब हमारे अंदर कोई बीमारी है तो पहले बीमारी की कैफियत को जानो कि कौन सी बीमारी है, फिर उसकी शिद्दत, उसकी क्या वईदे है, ये कितनी बुरी है और ये क्या क्या असरात करते हैं, क्या साइड इफेक्ट करती है। एक बीमारी है लेकिन कई बीमारियों को पैदा कर देती है, तो इसका एहसास हमें मालूम होना जरूरी है। जी ये रूहानी बीमारी है, जैसे जिस्मानी बीमारी में भी हमें पता होता है कि भाई हार्ट की बीमारी हर एक समझ जाता है, वो ये बहुत सेंसिटिव होती है और उसका बहुत ही इलाज करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, इसमें लेट नहीं करना चाहिए। देखो तो इस तरीके से मलेरिया होता है, इस तरीके से शुगर और प्रेशर और जो कुछ भी बीमारियां हैं, तो उसकी बीमारी की कैफियत और उसके असरात और उसका सबको हमें एहसास है। ऐसी रूहानी बीमारी का भी, तो जब किसी बीमारी में मुबतला हो तो उसको पहले इसका काम होना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या बीमारी है, उसकी क्या वईद है, फिर उस बीमारी के इलाज की फिक्र होगी। लेकिन अगर बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं कि बीमारी कैसी शदीद है, तो फिर उसका इलाज क्या करेगा, इलाज क्या करेगा। इसलिए पहले जुमले में हजरत वाला ने बदनजरी की बीमारी और निगाह को गलत इस्तेमाल करने की बीमारी, नामहरमों पर लज्जत की नजर से देखने की बीमारी की शिद्दत और खतरनाकी को बयान करते हुए फरमाया कि शर ऐसा है कि अपने असर से तमाम ताअत के, इबादत के अनवार को तारिक कर देता है, यानी जुल्मत वाला कर देता है। तो समझ, इसलिए पहले जुमले में बीमारी की शिद्दत बताई कि बीमारी कैसी है कि तमाम इबादतों के अनवार को, नूर को खत्म कर देता है, ये बदनजरी। अब इबादत हम कर रहे होते हैं और हमारी इबादत का नूर, इसीलिए बहुत लोगों का ये सवाल है कि हम इतनी इबादत कर रहे हैं, हमें चैन और सुकून क्यों नहीं मिल रहा, ये सवाल होगा। तो कभी उस पर गौर नहीं किया, तो वो चैन सुकून न मिलने की वजह से हम क्या करते हैं, इबादतों को और बढ़ाते हैं, वजाइफ को और बढ़ाते हैं और सोचते हैं चलो ये कमी है, ये कमी, इसको भी पढ़े, इसको भी पढ़े, यहां तक के पहले 5 मिनट के वजीफे थे, अब 4-4 घंटे के वजीफे हो गए, फिर भी वो सुकून नहीं मिल रहा है जो चाहिए, तो कैसे मिलेगा। साफ कह रहे हैं कि बीमारी क्या करती है, वो जो इबादत के नूर को खत्म कर देती है। नूर होगा तो ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा, और नूर ही खत्म हो रहा है तो ठंडक कहाँ मिलने वाली है कि चाहे कितनी इबादत कर लो। इसलिए फरमाया पहले बीमारी को दूर करो ताकि वो जो बीमारी हमारे नूर को खत्म कर रही है, वो बीमारी खत्म हो जाएगी तो नूर बाकी रहेगा। तो सिर्फ 5 वक्त की नमाजें और वाजिबात और सुन्नत पर भी इक्तिफा करेंगे तो भी हमें चैन और सुकून मिल जाएगा। इससे आप उस गुनाह की शिद्दत में अंदाजा लगाइए। आपने नमाजें भी पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, जिक्र भी किया, तस्बीहात भी पढ़ी, इन ताआत और इबादात से जो अनवार और बरकात हासिल हुई थी वो सब एक शर की वजह से तारीख हो जाती, मिट जाती है। अब बताओ, इसलिए बेचैनी जो बढ़ रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि गुनाह का काम है बेचैनी को बढ़ाना, नेकी का काम है चैन और सुकून को लाना। अब नेकी भी कर रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं, और गुनाह हमेशा कवि होता है कि एक गुनाह कई दिनों की इबादत के नूर को खत्म कर देता है, तो गोया हम गुनाह की जुल्मत ज्यादा होती है जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ रही, क्योंकि दोनों का है क्या, ये तुम्हें बेचैनी बढ़ाएगी और इबादत तुम्हें सुकून देगी। तो इसलिए हमारी इन बातों के सुनने का मकसद यह है कि हम असल मकसद पर आए कि हमें जो बेचैनी हो रही है, तो वो बेचैनी की वजह गुनाह होती है, तो उस गुनाहों का इलाज करे, और इलाज के लिए शेख को बताना जरूरी है। पहले शेख को पकड़े, फिर उसको बताए, फिर उसके मुताबिक काम करे, तो इंशाल्लाह गुनाह से जान छुटेगी, तो भी थोड़ी सी भी इबादत पर हमें चैन और सुकून मिल जाएगा। जी, तो इन ताआत और इबादत से जो नूर और बरकत हासिल हुई थी, वो सब उस एक शर की वजह से तारीख हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। अब उन लोगों का क्या हाल है जो नमाजें भी पढ़ते हैं और बेपर्दा भी फिरते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? और वो समझते हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी कोई गुना तो करते ही नहीं, नहीं खाली नमाज खाली शरीयत ने थोड़ी दिया है, शरीयत पूरा दीन दिया है, और पूरा दीन हम समझे नहीं। आज हमारे सामने दीन नमाज है, रोजा है, जकात है और हज है, बस इतना जिसने भी कर लिया, मर्द हो या औरत हो, कहते अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही दीन पर है। अब उनके सामने दूसरा दीन ही नहीं है, क्यों? कि आम तौर पर दीन इसी को गिना जा रहा है। इन मजालिस में और इस दर्स में बैठने से आपको ये पता चलेगा कि दीन क्या है। हाँ, तो गुनाहों से बचना भी एक दीन है, और उससे बचना बहुत जरूरी है। तो आज हम थोड़े बहुत माहौल से नमाज पर तो आ गए, लेकिन इस नमाज से हमें सुकून नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह होती है कि हमारी कहीं न कहीं शर है, गुनाह है, परेशानी इसकी वजह से बढ़ रही। तो फरमाया ताअत का फायदा यह है कि इंसान एक ताअत के बाद दूसरी ताअत की तरफ बढ़ता है। ताअत का फायदा क्या है कि इंसान एक इबादत के बाद दूसरी इबादत की तरफ बढ़ता है, और दूसरी इबादत से तीसरी इबादत की तरफ ले जाती है, और आदमी तरक्की करता चला जाता है। लेकिन जब ताअत का नूर, इबादत का नूर नहीं होता, तो वो ताअत बेहलावत हो जाती है, उसमें टेस्ट नहीं है। देखो आज हमारी नमाजों में टेस्ट नहीं, हमारे रोजों में भी हमें टेस्ट नहीं, हमारे हज में, उमरों में कोई टेस्ट नहीं है। इबादत हो रही है लेकिन लज्जत नहीं है, तो बेहलावत हो जाए, उसके फवाइद में कमी हो जाती है। हम लोग तो ताअत के नूर और उसकी हलावत से भी वाकिफ नहीं है, क्योंकि उसकी यानी इस ताअत को बेलज्जत, तो पहले उसकी लज्जत को पहचानोगे तो फिर उसकी बेलज्जती को भी पहचानेंगे। लेकिन हमने अभी तक इस ताअत की, इस इबादत की असली लज्जत को चखा ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं होता है कि क्या बेलज्जत होता है। तो ये आप जो सुन रहे हैं और जो सिलसिले में दाखिल है, जो अपनी इसलाह करा रहे हैं, मुराकबा जो उनको वजाइफ दिए गए हैं, अगर वो करते जाएंगे और अपने हालात को बताते जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि उनको अब वो इबादत की लज्जत और टेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद जब उसका जब टेस्ट चला जाएगा, जुल्मत आएगी, तो फौरन पता चलेगा, ओहो हमें एक नूर मिला था वो चला गया, वो बेचैनी वो फौरन पता चल जाएगा। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उससे बचने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इबादत की ये लज्जत होती है। इसलिए सहाबे किराम जब नमाज की नियत बांधते थे, तो ईशा के बाद बांधते थे और फजर हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। अब उनको उस इबादत में लज्जत आती थी, और हम नमाज की नियत बांधते हैं तो किस तरीके से जल्दी नमाज पढ़ ले, मजा नहीं आ रहा है। अब वो लज्जत कैसे, अगर हम किताबों में पढ़ते भी है तो हम सोचते हैं कि सही भी है या नहीं, हमारा दिमाग थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन हकीकत में बात सही है, वो लज्जत अगर हमें भी मिलेगी तो हमारी भी रातें ऐसी गुजर जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। हम लोग तो ताअत के नूर और उसकी हलावत से भी वाकिफ नहीं, तो उसके सल्ब होने को कहां एहसास होगा, क्योंकि उसकी नूरानियत से वाकिफ नहीं। तो जब चला जाता है तो उसका हमें पता ही नहीं। जिसको पहले नूर और हलावत हासिल हो, तो उसको फिर उसके सल्ब होने के बारे में पता चले कि वो नूर अब सल्ब हो चुका है। जी, हमारे मिजाजों के खराब होने की वजह से हमारा मिजाज खराब हो गया है, खराब होने की वजह से हमें ताअत के नूर का मतलब भी मालूम नहीं, ताअत के नूर का मतलब भी मालूम नहीं। जो अल्लाह वाले होते हैं उनको नूर का इदराक होता है, इदराक यानी एहसास होता है, समझते हैं। चुनाचे हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानुती रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है कि एक रोज वो किसी दावत में चले गए और वहां खाना खा लिया। ये मालूम नहीं था कि जिनके यहाँ दावत है उनकी आमदनी हराम की है, यानी उनकी इनकम हराम की, उनको पता नहीं था। बस एक मुसलमान ने दावत दी, चले गए। बाद में पता चला कि उनकी जो इनकम आमदनी कुछ मशकूक है। फरमाया करते थे कि उस दावत का ये असर था, खाना खाया, फरमाया उस दावत का, उस खाने का ये असर था कि काफी अरसे तक उस खाने की जुल्मत कल्ब में महसूस होती रही, काफी दिनों तक उस खाने की जुल्मत दिल में महसूस होती रही। अब बताओ, और हमको तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने अनवारा तभी देखे ही नहीं है। उन्होंने देखे थे तो जब वो जुल्मत वाला जब खाना आया तो उसकी जुल्मत उनको नजर आई, और फरमाया कई दिनों तक उसकी जुल्मत रही। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसलिए जिसको अनवारात का पता नहीं होता है ना, तो जब उसके सामने कोई बात करते हैं तो उसको एक अजीब सा लगता है, बोले ऐसा क्यों, यूं भी चलता है, यूं भी चलता है, उसके सामने ऐसा लगता है। अब वो बेचारा ना समझ है, अब उसको क्या समझावे। लेकिन जिसको पता होता है, ताअत का जब नूर मिल चुका होता है, तो वो कहता है भाई मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वजह से जो जुल्मत आने वाली है वो मुझे पता चलेगी, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। अब वो बात मरता समझ में नहीं आता है, हम उनसे बदगुमान हो जाते हैं कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो ऐसा करते हैं, का एक तो इख्तलाफ करते। ये इख्तलाफ नहीं होता, ये ईमान की हिफाजत होती है। तो उस खाने की जुल्मत कल्ब में महसूस होती रही। वो इस तरह के दिल में काफी अरसे तक फासिद ख्यालात आते रहे। खाने की वजह से क्या हुआ, फरमाया बुरे ख्यालात आते रहे और नाजायज कामों की तरफ तबीयत का मैलान होता रहा। बहरहाल जिन अल्लाह वालों के कुलूब मुजल्ला और मुसफ़ा होते हैं, उनकी कुलूब पर जरा सा धब्बा भी लग जाए, यानी जिनके दिल बिल्कुल साफ होते हैं, तो जरा सा धब्बा भी लग जाए तो उनको महसूस होता है कि कयामत आ गई। जैसे सफेद कपड़े पहने हो और उसमें जरा सा भी धब्बा लग जाए तो उस इंसान की तबीयत को जरा देखो, कितना उसको बेचैनी होगी कि कितना मैंने अच्छा कपड़ा पहना था और धब्बा लग गया, तो बेचैनी होगी कि नहीं होगी बताओ, जिसने साफ कपड़ा पहना हो। और जिसने काला ही कपड़ा पहना हो और उसको धब्बा लग जाए तो उसको कोई परेशानी नहीं, उसको एहसास ही नहीं होगा। तो जिसके कपड़े सफेद होंगे और उसको जब धब्बा लगेगा तो उसको एहसास होगा, बेचैनी बढ़ेगी। ऐसे ही जिसका दिल सफेद होगा तो उसको जब गुनाह का धब्बा लगेगा तो फिर फौरन एहसास होगा कि ओहो, बेचैन होगा। तो उनको यह महसूस होता है कि कयामत आ गई। क्योंकि हम लोगों के जौक और मिजाज खराब हो गए, हमारा मिजाज खराब हो गया है, इसलिए न ताअत के नूर और लज्जत का हमको इदराक होता है और न ही उसके सल्ब होने का इदराक होता है। पहली बात यह है कि जिस दिन कोई शख्स बद नजरी के गुनाह में मुब्तला होगा, कि जिस दिन कोई शख्स बद नजरी के गुनाह में मुब्तला होगा उस दिन उसकी ताअत में नूर नहीं होगा। उस दिन वो इबादत तो करेगा, नमाजें नहीं छोड़ेगा, तस्बीहात भी नहीं छूटी, लेकिन उस दिन उसके इबादत में नूर नहीं होगा। यहां तक कि मुराकबा भी करेगा, लेकिन कहते हैं मुराकबा में अभी कुछ दिनों से मजा नहीं आ रहा है। अब वो शेख समझ जाता है कि इसको मजा नहीं आ रहा है, उससे कुछ ना कुछ गलती हुई है, इसलिए उसको कहते हैं तुम करते जाओ। वो जुल्मत फिर धुल जाती है जो हो गई थी। जब बार बार ये कहता रहता है तो फिर कहना पड़ता है कि आपसे कोई गुनाह हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। उस गुनाह की जुल्मत जो है आपको मुराकबे में आ रही है और वो आपको बैठने नहीं देती। याद रखना, मुराकबा बड़ी अजीब चीज है। गुनाह भी करो और मुराकबा भी हो तो नहीं हो सकता, एक चीज रहेगी, या तो मुराकबा छूटेगा, गुनाह पर मुदावमत या हमेशगी रहेगी। और अगर तुम्हें गुनाह को छोड़ना है तो मुराकबे की बरकत से यह ऐसे ऐसा छूट जाएगा, लेकिन दोनों चीजें साथ में कभी नहीं रह सकती। इसलिए अक्सर लोग मुराकबों को छोड़ देते हैं, इसी से पता चल जाता है कि ये हार गए और वो अपनी तबीयत पर चलना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, और बहुत से लोग हिम्मत करके आगे निकल जाते हैं। तो जी, जब पहली मर्तबा बदनजरी के गुनाह में मुब्तला होगा तो उस दिन उसकी ताअत में नूर नहीं होगा, इस ताअत के दुनियावी फवाइद उसको हासिल नहीं होंगे। इसलिए हजरत ने आगे फरमाया कि इसलिए उसका इलाज एहतिमाम से करना चाहिए। फिर इलाज के बारे में फरमाया कि जाहिर है कि मादा खलकी है, यानी फितरत में है, इंसान के अंदर रखा गया है, बस वो शर नहीं है, यानी ये शहवत और ये नफसानी ख्वाहिशात का दिल में पैदा होना, ये बजाते खुद शर नहीं, ये शर नहीं, क्यों कि ये खल्की और फितरी है, कोई इंसान इस मादे से खाली नहीं, हर इंसान के अंदर शहवत और नफ्स रखा हुआ है और ख्वाहिशात रखी हुई है, ये शर नहीं, इसका गलत इस्तेमाल करना शर है, इसका सही इस्तेमाल करना इबादत है। बल्कि इस मादे से इंसान का खाली होना ऐब है, अगर किसी के अंदर शहवत ना हो तो ये उसका ऐब है, लिहाजा अपनी जात में शर नहीं बल्कि उसमें बहुत सी मसलहतें हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद पर तवालुद और तनासुल कायम होती है। इसी के पर तो इंसान यानी दुनिया में यानी औलाद पैदा होती है और इंसान बढ़ रहे हैं, इसी बुनियाद पर है, आलम का निजाम उस पर कायम है, अगर ये मादा न हो तो आलम का निजाम फना हो जाएगा, शहवत ही न हो तो दुनिया का निजाम सब फना हो जाएगा। अलबत्ता इस मादे के नाजायज इस्तेमाल पर अमल करना शर है, यानी मादा खुद शर नहीं और खुद तबीयत में मैलान और ख्वाहिश का पैदा होना शर नहीं, लेकिन उसके नाजायज तकाजे पर अमल करना शर है और उसके जायज तकाजे पर अमल करना शर नहीं बल्कि खैरे महज है, वो तो इबादत है। अब देखो, चीज एक है, इस्तेमाल करूंगी एक जगह पर तो शर और दूसरी जगह इस्तेमाल करूंगी तो खैर, अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया, अल्लाह ने ये चीज रख दी और फिर बता दिया यहां इस्तेमाल करूंगे तो खैर, यहां इस्तेमाल करूंगे शर, अब तुम क्या करते। तो अब हमारी असल फितरत तो शर की तरफ ही जाती है, लेकिन खैर पर लाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए हैं। वही सहाबा जो शर पर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से सब के सब खैर पर आ गए, उनके अंदर से शर दब गया, तो वो थे, उनके अंदर भी शर था, ऐसा नहीं था। क्या आप उनकी पहली जिंदगी देखो, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले की नबुवत से पहले की जिंदगी देखो तो कितना शर भरा हुआ है, लेकिन जब आप आए हैं तो आपकी आने के बाद उनके अंदर खैर आ गया। तो ये इसको कहते हैं इस्लाह, इसको कहते हैं इस्लाह। आज इस्लाह को समझ ही नहीं रहा है। अरे जैसे जिस्म की इस्लाह यानी सेहत की जरूरत है, ऐसे रूहानी सेहत की भी जरूरत है। रूहानी एतबार से हम में से हर एक बीमार है, लेकिन कभी कभी रूहानी डॉक्टर नहीं पकड़ते, और जिस्म की फिक्र हो रही है और जिस्म के लिए माल खर्च हो रहा है और जिस्म को सही रखने के लिए पैसा नहीं है तो कर्ज लिया जा रहा है और कितना वक्त निकाला जा रहा है, लेकिन रूहानी बीमारी उससे ज्यादा खतरनाक है, उसके लिए न माल खर्च करना है न वक्त खर्च करना है, घर में बैठे बैठे काम करना है, फिर भी कोई सेहत लेने के लिए तैयार नहीं। जी, अब हदीस शरीफ में है कि एक शख्स अपने घर में दाखिल हुआ, एक शख्स अपने घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा, और बीवी ने शोहर को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं, दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं और उस पर अजर सवाब अता फरमाते हैं, लिहाजा इस मादे के जायज इस्तेमाल पर तो सवाब है। अब देखा, ये नजर और ये शहवत अपनी बीवी को देखा है तो उस पर जायज नहीं बल्कि सवाब मिल रहा है, जायज नहीं बल्कि उस पर सवाब मिल रहा है, अजर मिल रहा है, इबादत का अजर। इसलिए न मादा बजाते खुद शर है, तो ये चीज शर नहीं है शहवत, लेकिन उसको हलाल जगह जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है वहां इस्तेमाल किया तो इबादत, और जहां अल्लाह ने मना किया है वहां इस्तेमाल करेगा तो गुना। और नहीं, इस मादे को सही जगह पर इस्तेमाल करना शर है बल्कि खैर है, लेकिन सिर्फ इस मादे का गलत जगह पर इस्तेमाल करना, उस मादे के गलत तकाजे पर अमल करना शर है, और वो अमल करना इख्तियारी है, उसमें मजबूर नहीं है, इख्तियारी है, इख्तियारी की जिद भी इख्तियारी है, तो उससे रुकना भी, ये अमल भी इख्तियारी तो उससे रुकना भी इख्तियारी, बस फैल से रुकना इख्तियारी ठहरा, इसमें कोई माजूरी नहीं है, बस हिम्मत कीजिए, यही उसका जवाब है। थोड़ी तकलीफ होगी, फिर आदत हो जाएगी, फिर लज्जत और फरहत होगी। ये वो जिसने सवाल किया था उसको जवाब दिया, लेकिन उस जवाब तो दो लाइन का है, ये उसकी पूरी तफसीर है। जी, वजाहत है। अब इशारा उस तरफ फरमा दिया कि इसके इलाज के लिए कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, समझे, कोई ऐसी टेबलेट नहीं है कि फरमाया वो पिला दो तो ये बीमारी दूर हो जाए, और इसका नुस्खा घोल कर पिला दिया जाए, उसके बाद दिल में गुनाह का कोई तकाजा ही पैदा न हो, ऐसी कैप्सूल किसी केमिस्ट में भी नहीं मिलेगी। जी, तो और न कोई ऐसा वजीफा है, ऐसा कोई वजीफा है जो पढ़कर फूंक दिया जाए, वजीफा भी ऐसा नहीं है कि चलो इसको पढ़ो और फूंक मार दोगे तो बस तुम्हारे अंदर से शहवत खत्म, अब तुम्हारी नजर नीचे हो जाएगी, तो न कोई वजीफा है, न कोई ऐसी हर्बल कोई मेडिसिन है जो पढ़कर फूंक दिया, और फिर शहवत का कोई तकाजा दिल में पैदा ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले बता दिया कि मादा बजाते खुद शर नहीं, और उसके जायज तकाजे पर अमल करना भी शर नहीं, हाँ उसके गलत तकाजे के दिल में पैदा होने के बाद उसके ऊपर अमल करना शर है। जी, और वो इख्तियारी है, और जब अमल इख्तियारी है तो उससे बचना भी इख्तियारी है, और जो भी काम इख्तियारी हो उसके लिए हिम्मत की जरूरत है, आदमी हिम्मत से काम ले और हिम्मत को इस्तेमाल करे। जी, बाज औकात ये महसूस होता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ा, बाज औकात ये महसूस होता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ा तो जान पर बन जाएगी, इसलिए मैं काम नहीं, यानी मेरे लिए बहुत तकलीफ होगी, मेरी जान जाएगी, मेरा पता नुकसान हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, यानी ये काम अकली एतबार से तो बेशक इख्तियारी है, लेकिन अमली जिंदगी में आकर देखो तो ये मामला गैर इख्तियारी मालूम होता, अकल के एतबार से तो इख्तियार है, लेकिन जब अमल करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मेरे इख्तियार में नहीं है। याद रखो, ये मामला गैर इख्तियारी मालूम होता है, इसलिए कि इस काम को छोड़ने से मुझ पर कयामत आ जाएगी, पहाड़ टूट पड़ेगा, लिहाजा कैसे कह दिया जाए कि काम इख्तियारी है। तो अब सुन लो उसका जवाब, ये होता है, तो बात दरअसल ये है कि जितने भी अफआल इख्तियारी होते हैं, इख्तियारी समझ गए ना, इख्तियारी का लफ्ज बार बार आ रहा है और आगे भी आएगा, यानी जो इंसान कर सकता है, देखो एक इंसान की वो तबीयत है जो उसके करने में इसका दखल ही नहीं है, जिसे वसाविस का आना मिसाल के तौर पर, अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो आ जाते अचानक, तो शहवत को यानी इस्तेमाल करना, शहवत अल्लाह ने रखी है, अब उसको इस्तेमाल करना ये इख्तियार में है कि कहाँ करना, सही जगह गलत जगह पर, तो इसके इख्तियार में, अगर गलत जगह इस्तेमाल करेगा तो उस पर पकड़ है, कि जो इख्तियारी अमल होता है उस पर पकड़ है, और जो गैर इख्तियारी होता है उस पर पकड़ नहीं है, वो उसकी बहस आगे आएगी कहीं ना कहीं किसी मजलिस के अंदर। इनका शदीद तकाजा होता है, जितने भी अफआल इख्तियारी होते हैं उनका शदीद तकाजा होता है, उनको छोड़ने पर शदीद तकलीफ का मुरतब होता है, यानी बहुत तकलीफ होती। ये सब चीजें इजाफी है, यानी वो तो होना ही होना, हकीकी नहीं, वक्ती है। ये तकलीफ वक्ती है, थोड़ी देर के लिए तकलीफ। लिहाजा एक शख्स की निस्बत से कम होगी और दूसरे शख्स की निस्बत से ज्यादा होगी। किसी के लिए कम तकलीफ होगी, किसी के लिए ज्यादा तकलीफ होगी। एक शख्स को एक काम के छोड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है और दूसरे शख्स को उसी काम को छोड़ने में कम तकलीफ हो रही है। तीसरे को और कम हो रही है, चौथे को और कम हो रही है। लिहाजा किसी फैले इख्तियारी और गैर इख्तियारी होना ये हकीकी है, और इस इख्तियारी फैल के छोड़ने पर तकलीफ का शदीद होना ये वक्ती है, जो अफराद के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ होता रहता है। इसलिए कि एक आदमी खुद इस फैल को, इस काम को छोड़ने को अपने हक में शदीद बना लेता है, खुद ही बना लेता है, यानी मेरे से तो हो ही नहीं सकता, और दूसरा आदमी इस फैल को अपने हक में खफीफ बना लेता है। दूसरा आदमी कहे नहीं मुझे करना है। इसलिए शेख बनाना है तो शेख के बनाने से क्या हिम्मत होती, और अगर खुद ब खुद करने जाओगे ना तो फिर नफ्स करने नहीं देता। खुद ब खुद इसका इलाज करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती, और अगर शेख को बनाकर आप इलाज करोगे तो कम तकलीफ होगी, और तकलीफ हुई तो उसमें भी तसल्ली मिलेगी। आपने बता दिया कि तकलीफ हो रही है, तो उसके जरिए से हमें एक मदद मिलती है। जैसे हम डॉक्टर के जरिए से अगर कोई दवा लेते हैं तो दवा से हमें तकलीफ हो भी रही है तो डॉक्टर को बताने से हमें वो तकलीफ कम हो जाती। तो ये है, तो अफराद के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ होता रहे। इसलिए कि एक आदमी खुद इस फैल के छोड़ने को अपने हक में शदीद बना लेता, दूसरा आदमी इस फैल को अपने हक में खफीफ बना लेता। अगर एक काम को बार बार करके तुम अपने आप को उसका आदी बना लोगे तो आदी बनाने के नतीजे में उसका छोड़ना बहुत दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा फी नफसी छोड़ना दुश्वार नहीं था, लेकिन अपने इख्तियारी अमल से आदत डाल डाल कर उसको अपने हक में मुश्किल बना दिया। और जब इस काम को छोड़ना मुश्किल बना दिया तो अब ये कह दिया कि इसका छोड़ना गैर इख्तियारी है। अरे भाई, जिस तरह तुमने आदत बनाकर मुश्किल बनाया था, इसी तरह आदत डालकर छोड़ भी सकते। एक आदमी बेड पर सोने की आदत बना दिया तो अब उसको कहो भाई नीचे सोने, बोले मेरे लिए बहुत मुश्किल। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, वो ऊपर सोने की आदत बना दी है इसलिए नीचे सोना मुश्किल होगा। जब नीचे सोता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे सोने का, और एक आदमी नीचे सोता है तो उसको बेड पर सुलाओ तो बोले बहुत मुश्किल कि मुझे उसमें नींद नहीं आती, मुझे तो नीचे की आदत है। तो इसकी आदत बन गई है, अब उसको ऐसा करो। तो ऐसे भी हमारी बहुत सारी आदतें हो गई है। अब जो गुनाह की आदत है, अब उसको छुड़ाने के लिए मुश्किल तो लगेगी, लेकिन बहुत आसानी से छूट सकती है। देखिए, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह, हाँ, अगर ये चीजें किसी शख्स को पहली मर्तबा खिलाओगे तो उसको चक्कर आएंगे, अब खाना उसके लिए मुश्किल, उल्टी हो जाएगी। अगर उससे कहा जाए कि आइंदा ये मत खाना, वो कहेगा मैं तौबा करता हूं, आइंदा नहीं खाऊंगा, उसी दिन छोड़ने को तैयार हो जाएगा। बल्कि खाने के मुकाबले में छोड़ना ज्यादा आसान होगा, लेकिन दूसरे दिन आपने उसको दोबारा दो यानी वही चीज दोबारा खिला दी तो पहले दिन खाने से जो तकलीफ हुई थी अब दूसरे दिन उससे कम तकलीफ होगी, तीसरे दिन फिर खिला दिया तो अब तकलीफ और कम होगी। होते होते अब उसकी आदत बन गई, अब नहीं छूटती, छूटती नहीं, मुंह से ये काफर लगी हुई। अब इतनी आदत हो गई कि अब अगर उसको छोड़े तो कयामत गुजर जाए। अब किसी को तंबाकू की आदत हो गई है, ये हिंदुस्तान वाले ज्यादा खाते हैं, तो आदत हो गई है, अब उसको कहोगे जरा उसको छोड़ो तो उसके लिए कयामत हो जाएगी। आप बताइए कि क्या तंबाकू जिंदगी के लिए ऐसा नागुजीर था कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल था? क्या उसके बगैर इंसान को मौत आ जाएगी? ऐसा नहीं था, बल्कि तुमने अपने अमल से उसकी आदत डाल ली, और उतनी आदत डाली कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, और अब उसको छोड़ना तुम्हें मुश्किल नजर आने लगा। उससे मालूम हुआ कि फी नफसी उसको छोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन तुमने खुद अपने इख्तियारी अमल से उसको मुश्किल बना दिया, और जब तुमने अपने इख्तियारी अमल से उसको मुश्किल बना दिया तो अब तुम अपने इख्तियारी अमल से उसको आसान भी बना सकते हो। थोड़ी हिम्मत करोगे तो आसान भी बन सकता है। लिहाजा उसको उसी तरीके से इख्तियारी अमल के जरिए छोड़ना चाहोगे तो छूट भी जाएगा। जी इंशाल्लाह दूसरी बातें कल पढ़ेंगे जी। 45 हो गया, थोड़ी देर मुराकबा कर लें। आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये सोचे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।